देखिए, इस वक्त तक जो सूरत हाल है कि 80% वोट जो है हमारे वो काउंट हो चुके हैं और जो पोस्टल वोट है उनकी गिनती अभी जो है वो चल रही है। कोएलिशन के पास इस वक्त 74 सीटें हैं और लेबर पार्टी के पास इस वक्त 66 सीटें हैं। मगर इसके अलावा जो बहुत बड़ी एक चेंज है कि जब हम इलेक्शन में गए हैं तो ख्याल हुकूमत का ये था कि डबल रेजोल्यूशन जैसे हुई है तो तमाम सेनेटर, अदरवाइज तो सेनेट के आधे मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होते हैं, आधी टर्म के बाद दूसरे जो हैं वो होते हैं इलेक्ट सेनेटर। इस दफा जब डबल रेजोल्यूशन हुई है तो तमाम सेनेटर जो हैं वो नए सिरे से उनका इंतखाब होना था। टर्नबुल की हुकूमत का या लिबरल पार्टी, लिबरल नेशनल कोएलिशन का ख्याल ये था कि चूंकि जो बिल है लोअर हाउस से जब पास होकर सेनेट में जाता है तो सेनेट से बिल पास नहीं हो रहे हैं, लिहाजा डबल रेजोल्यूशन के बाद उनको उम्मीद ये थी कि सेनेट में एटलीस्ट इतनी तादाद जरूर हो जाएगी लिबरल नेशनल की कि जो इनका पार्टी का एजेंडा है और जो बजट से रिलेटेड जो चेंजेस वो लाना चाह रहे हैं वो सेनेट में पास हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्शन में गए हैं तो उसी वक्त ही आप देखिए कि शुरू में ही, चूंकि ये इस दफा बहुत लंबी कैंपेन चली है 8 हफ्ते की, जो कि बड़ी अनयूजुअल है इलेक्टोरल हिस्ट्री में 8 हफ्ते लंबी, तो उसमें उसी वक्त ही ये बात कह रहे थे कि पहले जैसे वन नेशन पार्टी, जिसकी माइग्रेंट्स के हवाले से चूंकि इसका एक रोल है तो हम इससे मैं बात शुरू करती हूँ कि जो वन नेशन पार्टी है, अगर पॉलिन हैंसन को लेट्स से कि पहले अगर 1 लाख वोट चाहिए थे तो डबल रेजोल्यूशन के बाद उनको एक्चुअली 50,000 वोट चाहिए हैं सेनेट की सीट जीतने के लिए, और जो इलेक्शन के नतीजे अभी तक सामने आए हैं इससे लगता ये है कि हो सकता है कि जो वन नेशन पार्टी है इसके 2 या 3 सेनेटर, 2 तो वो कह रहे हैं कि होंगे, उनका जो प्राइमरी वोट है वो न्यू साउथ वेल्स में और क्वींसलैंड में बड़ा है पहले की निस्बत। टोटल तकरीबन इनको वन नेशन पार्टी को 1 लाख वोट मिला है। इसी तरह आप देखिए कि और कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, स्पेशली जो कंजर्वेटिव राइट की पार्टियां हैं जैसे क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, वन नेशन है, राइज अप ऑस्ट्रेलिया है, कैटर पार्टी है, ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन पार्टी है, तो ये वो तमाम पार्टीज हैं जो कि छोटी पार्टीज हैं और इंक्रीसिंगली हमें इनकी तादाद जो है वो ज्यादा नजर आने लग गई है। और अभी भी आप देखिए कि जो लिबरल नेशनल के सेनेटर हैं कोरी बर्नार्डी साउथ ऑस्ट्रेलिया से, उनका ये कहना है कि वो ये सोच रहे हैं, और ये अभी से बात सामने आ रही है, वो ये सोच रहे हैं कि जो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव वोट है या जो राइट विंग का वोट है वो सारा किसी एक प्लेटफॉर्म के अराउंड इकट्ठा होना चाहिए ताकि वो एक थर्ड फोर्स या एक बड़ी फोर्स के तौर पर सामने आ सके। जहां तक पॉलिन हैंसन की है तो आप ये देखिए कि बड़े स्ट्रेटेजिकली बड़ी पार्टियों ने इनको पीछे तकरीबन 2 डेकेड्स तक इलेक्शन से बाहर रखा है। जॉन हॉवर्ड के जमाने में जब ये पार्लियामेंट में आई हैं और उसके बाद जो है इस दफा दोबारा वो पार्लियामेंट में आई हैं। जॉन हॉवर्ड ने अभी जो कल बात कही, उन्होंने कहा कि भी किसी भी सियासी जमात को ये नहीं कहना चाहिए है कि वो वन नेशन के साथ किसी भी किस्म की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो वोट लेके आई हैं, जो कंजर्वेटिव वोट लेके आई हैं, वो एक रियलिटी है। और अगर कोरी बर्नार्डी क्रिश्चियन पार्टी, वन नेशन पार्टी, अगर ये सारी किसी एक प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम पार्टियां जिनका एजेंडा जो है माइग्रेंट्स के हवाले से, असाइलम सीकर्स के हवाले से, रेफ्यूजीज के हवाले से मोर और लेस मिलता जुलता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें एक खास किस्म की जो पॉपुलेशन है, पर्टिकुलरली आप ये देखिए कि 96 में अगर वन नेशन जो है वो एजियंस की बात कर रही थी, एजियन ऑनस्लॉट की बात कर रही थी, अब खुल के वो सारे एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लामिक सेंटीमेंट जो है वो उनको उभार रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं कि इस वक्त जहां जहां पे भी टेररिज्म हो रहा है उसमें चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है, इसलिए मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उसको ऑस्ट्रेलिया में आने नहीं देना चाहिए, जो कि एक काज ऑफ कंसर्न है दोनों बड़ी पार्टियों के लिए भी, और वो तमाम माइग्रेंट्स, फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट या वो माइग्रेंट्स जो कि यहाँ पे कई जनरेशन से रह रहे हैं और मुसलमान हैं या अपने आप को रिलीजन ऑफ इस्लाम से आइडेंटिफाई करते हैं, उनके लिए ये इससे बड़ी एक एंग्जाइटी की सिचुएशन पैदा हो गई है हमारी पॉलिटिक्स में कि जब एक तरफ हमारी सेनेट में ये तादाद बढ़ती जा रही है, प्राइमरी वोट अगर इनका जो है वो 1.5 लाख है तो सिर्फ वन नेशन का, और अगर सारों को मिलाएं तो आप ये देखिए रफली तकरीबन 3-4 लाख के करीब ये वोट है, तो उससे जो जब पार्लियामेंट में ये जाएंगी और बड़ी पार्टियां जो हैं, बेशक के लिबरल पार्टी ने जैसे मेलकम टर्नबुल ने इस दफा पहली दफा ये हुआ कि उन्होंने इफ्तार करवाई अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस पे सिडनी में, लैंग्वेज की कि हमें हेट्रेड की लैंग्वेज नहीं बोलनी है, मगर अगर दूसरी पार्टियां लेजिटिमेटली वोटर्स की स्ट्रेंथ पे वोट लेके जब वो पार्लियामेंट में आएंगी, सेनेट में हैं या लोअर हाउस में हैं, तो वो वहां पे जो एंग्जाइटी क्रिएट होगी और जिस तरह की डिबेट होगी वो एक काफी एंग्जाइटी की सूरत हाल माइग्रेंट्स में और मुस्लिम कम्युनिटी में पर्टिकुलरली वो क्रिएट कर रही है।
अच्छा, ये तो हमने आपने अभी से बात की कि ये जो कंजर्वेटिव पार्टियां हैं छोटी, इनका एक राइज हुआ है, इनके नंबर्स में इजाफा हुआ है ख़ास तौर पे सेनेट में
जी।
और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि जो हम मालकम टर्नबुल की जो हुकूमत है उनका रुझान किसी हद तक, उस हद तक उतना कंजर्वेटिव नहीं है जितना कि उनसे कबल शायद टोनी एबिट की गवर्नमेंट के लिए समझा जाता था। तो क्या ऐसी सूरत में वो क्या चैलेंजेस इनको दरपेश होंगे कानून साजी करवाने के लिए, अपने बिल पास करवाने के लिए सेनेट से, तो क्या इनके लिए मुमकिन होगा विद इन अ पार्टी और विद इन और गवर्नमेंट को चलाने के लिए? कि खासी मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं है क्या सामने?
बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है आपकी। आप ये देखिए कि मैल्कम टर्नबुल ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है उसमें उन्होंने जितनी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आई हैं जब से मैल्कम टर्नबुल प्राइम मिनिस्टर बने थे इस इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने जितनी भी बात की है उसमें उन्होंने जो लैंग्वेज ऑफ हेट्रेड है या जो पॉलिटिकल रेटरिक है एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम, वो इस्तेमाल नहीं किया है। उनकी जो लैंग्वेज थी वो बड़ी मॉडरेट थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मल्टीकल्चरल कंट्री है और उसमें जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उनको एंटी इस्लामिक की बजाय उन्होंने वो फर्क क्रिएट किया है कि मुसलमानों में जो एक एलिमेंट है जो रेडिकलाइज है और जो इस तरह के काम कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं उसमें एक जो फैक्टर है वो ये भी है कि जो कोएलिशन में जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है या जो कोएलिशन में या लिबरल पार्टी का जो राइट विंग के सपोर्टर हैं या वोटर हैं, उन्होंने इसको अच्छा नहीं लगा, उनको ये पसंद नहीं आई ये बात। इसी वजह से जो स्विंग हुआ है इस दफा इलेक्शन में, अभी तक जो वोट काउंट हुआ है तो उसमें रफली 3.4% स्विंग है अगेंस्ट कोएलिशन, और जो छोटी पार्टियां हैं वो सारी आप देखिए तो उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसका नेगेटिव में स्विंग गया हो, सारों का पॉजिटिव में है। जब पार्लियामेंट में कोई भी ऐसा बिल पास होगा जो प्रेजेंट होगा जिसका ताल्लुक जो है वो रेफ्यूजी पॉलिसी से है या असाइलम सीकर्स पॉलिसी से है या जो होमलैंड सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज हैं या नेशनल सिक्योरिटी से और बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे लॉज हैं या जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं जैसे कोएलिशन है जिनमें ऑस्ट्रेलिया जो है डिफेंस फोर्सेज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, खा वो इराक सीरिया का है इशू या अफगानिस्तान का है, तो लिबरल पार्टी के लिए या लिबरल कोएलिशन के लिए ये बहुत बड़ी दुश्वारी पेश आएगी कि अगर उनकी बिल्कुल एक थिन सी मेजोरिटी है लोअर हाउस में और वो गवर्नमेंट जो उन्होंने बनाई है जब यहां से वो बिल जाएगा सेनेट में, तो सेनेट में उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी क्योंकि उनका नंबर पहले से कम हुआ है, बड़ा नहीं है। और ना सिर्फ उनका नंबर कम हुआ है बल्कि जो सेनेटर आए हैं उनमें राइट विंग से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स और राइट विंग से ताल्लुक रखने वाली पार्टियों की बेशक छोटी ही प्रेजेंस है, मगर अगर देखा जाए उनको कि अगर वो एन ब्लॉक किसी चीज को किसी बिल को वो अपोज करेंगे तो लिबरल पार्टी या कोएलिशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उन बिलों को वो सेनेट से रूव करा सके।
सो अगर हुकूमत इतनी फंक्शनल नहीं होगी तो क्या, जैसे कि बिल शॉर्टन ने भी कहा कि ये तो हुकूमत शायद साल भर भी ना चल पाए इसी बनने वाली, तो क्या हम इस किस्म की कोई चीज सामने देख रहे हैं क्या इस किस्म?
वैसे तो देखिए पॉलिटिक्स में हमने ये देखा है कि यू नेवर से नेवर नेवर नेवर, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में किसी चीज की भी सर्टेनिटी नहीं है। बिल शॉर्टन का कहना है कि विद इन अ ईयर स्नैप इलेक्शन होंगे एंड ही हैज प्रेडिक्टेड कि इस साल के आखिर तक स्नैप इलेक्शन हो जाएंगे और हमें दोबारा हम जो मैल्कम टर्नबुल है अगर वो बिल पास नहीं करा सकते, अगर बजट पास नहीं होता है तो वो जो पॉलिटिकल थॉ है या जो वो स्टेल एक स्टेटस को हो जाएगा उसको तोड़ने के लिए इलेक्शन का होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप ये देखिए कि ये लग रहा है कि जैसे अगर 74 सीटें हैं इस वक्त कोएलिशन की और दो इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनके साथ मिल गए हैं, अगर निक ज़ेनोफोन के साथ भी इनकी बात हो जाती है क्योंकि वो एक मॉडरेट और बड़ा सोबरिंग एलिमेंट है हमारे पार्लियामेंट में और इस दफा उनका भी जो प्राइमरी वोट भी बड़ा है और उनकी नंबर भी बड़ा है, लेकिन वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही उनकी स्ट्रेंथ है निक ज़ेनोफोन टीम की, तो आप ये देखिए कि फिर भी ये बड़ा फ्रेजल किस्म की अरेंजमेंट है जिसमें इशू टू इशू बात होगी. जैसे जॉन हार्वर्ड ने कहा कि किसी एक पार्टी को या किसी एक पॉलिटिकल फिगर को गवर्नमेंट को ये नहीं कहना चाहिए कि हम उनके साथ डील नहीं करेंगे, बल्कि गवर्नमेंट को मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पावर्स और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं हमारी पार्लियामेंट में, इशू बाय इशू उनके साथ डील करना पड़ेगा और यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी. अगर आप हिस्ट्री देखें हमारी, तो आप ये देखिए कि पिछले कई सालों से हमने ये देखा है कि अगर पार्लियामेंट में बिल किसी भी पार्टी की, खबर लेबर पार्टी है या कोएलिशन है, अगर दोनों हाउसेज में उनकी मेजोरिटी नहीं है या एटलीस्ट सिंपल मेजोरिटी नहीं है, तो बिल पास होना जो है वो बड़ा मुश्किल है. और जब कोई भी हुकूमत अपने बिल, खासतौर पर फाइनेंशियल बिल, अपने पास नहीं करा सकती है, तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इफेक्टिवली हमारी डिसफंक्शनल हो जाती है. और जितनी इस वक्त फ्रेजल सूरत हाल है, उसे लगता नहीं है कि ये हुकूमत बहुत देर तक चल सकेगी. ऑलरेडी आप देखिए कि इवन आज बिल शॉर्टन ने कंसीड किया है और मेलकम टर्नबल ने विक्ट्री क्लेम की है, मगर इंटरनल जो स्ट्राइफ है कि कोएलिशन के अंदर जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है, और ये इक्का दुक्का बात जो है, हालांकि वो कोई बहुत बड़ी मतलब खबर नहीं बनी है, मगर ये ऐसे फ्लेयर्स जो है वो हमें नजर आए हैं कि मेलकम टर्नबल जो है उनको पार्टी की जो लीडरशिप है उसको रिकंसिडर करना चाहिए कि आया वो हुकूमत बना सकेंगे तो क्या चला सकेंगे. और ये मेरा ख्याल है कि बड़ी फ्रेजल जो सूरत हाल है इस वक्त, इससे कोई हमें नजर नहीं आता है कि कोई स्टेबिलिटी हुकूमत में आएगी अगले सालों में. अगर ये इलेक्शन, ये हुकूमत जो है वो पूरा टर्म पूरा भी करती है कोएलिशन, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट पॉलिसी जो ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बिल पास कराना चाहते हैं, वो हो सकेंगे.
चलें हम देखते हैं कि आगे क्या होता है. बहुत बहुत शुक्रिया ये सारा अपडेट हमें देने का. बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का.